ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 18, अध्याय 6 श्लोक नंबर 18। श्लोक है यदा विनियतम चित्तम आत्मन नैवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक नंबर 18 फिर से। यदा विनियतम चित्तम आत्मन नैवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। संधि विच्छेद है यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। संधि विच्छेद दुबारा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। शब्दों का अर्थ है यदा अर्थात जब विनियतम अर्थात विशेषतः चित्तम अर्थात संयमित चित्त आत्मनेव, इसमें दो शब्द है आत्मनि एव। आत्मनि अर्थात आत्मा में, एव अर्थात ही। अवतिष्ठते अर्थात भली भांति स्थिर हो जाता है। तदा अर्थात तब सर्व कामेभ्य अर्थात सब कामनाओं से निस्पृह अर्थात बिल्कुल इच्छाहीन हुआ युक्त अर्थात योग युक्त इति अर्थात ऐसा उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब शब्दों का अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब विनियतम अर्थात विशेषतः संयमित चित्तम अर्थात चित्त आत्मनेव, इसमें दो शब्द है, आत्मनि एव। आत्मनि अर्थात आत्मा में, एव अर्थात ही। आत्मनेव अर्थात आत्मा में ही। अवतिष्ठते अर्थात भली भांति स्थिर हो जाता है। तदा अर्थात तब। सर्व कामेभ्य अर्थात सब कामनाओं से। निस्पृह अर्थात बिल्कुल इच्छाहीन हुआ। युक्त अर्थात योग युक्त। इति अर्थात ऐसा। उच्चते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है, जब विशेषतः संयमित चित्त आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ योग युक्त ऐसा कहा जाता है। अभी तक के श्लोकों में योग की स्थिति में एकाग्र होकर बैठने की बात, या तो किस तरह से अच्छा योग लग सकता है, वो बातें बताई। विशेषकर जैसे कल और परसों का जो श्लोक है, 16 और 17 नंबर का, उसमें ये बात बताई है कि अधिक खाने वाले या बिल्कुल उपवास वाले का योग नहीं लगता, न ही अधिक सोने वाले का या पूरा जागने वाले का अच्छा योग लग सकता है। इसीलिए ही आहार विहार में, कर्मों में युक्ति युक्त होना चाहिए। तो ऐसा जो युक्ति युक्त आचरण करने वाले हैं, उनका योग ही दुख हरता है। तो युक्ति युक्त होना अर्थात ही बैलेंस वाली स्थिति, कर्मों में इंद्रियों से जो भी कर्म किए जाते हैं, तो सब में श्रीमत अनुकूल कर्म हो, और ऐसे श्रीमत अनुकूल कर्म अर्थात ही श्रीमत अनुसार अपने आप को चलाएंगे, तो मन और इंद्रिया कंट्रोल में जिनकी हो जाती है, दूसरे तीसरे अध्याय में जिस तरह से इंद्रिया चंचलता करती है, या तो अपने विषय भोगों का सेवन करती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं निर्माण होती है देह भान के कारण, तो चंचलता आती है, अस्थिरता होती है, जिस कारण मन बुद्धि भी हिलने लगती है, जो दूसरे अध्याय में इन बातों का उल्लेख है कि ये जो इंद्रिया है वो बुद्धिमान पुरुष को भी पूरी तरह से मत डालती है, अर्थात हिला देती है, हलचल पैदा करती है। इसीलिए जैसे कि अभी के श्लोकों में इसी बात का उल्लेख आया है कि जिनका चित्त विशेषता संयमित है, अर्थात आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, आत्मिक स्थिति में ही जो स्थिर हो जाते हैं, तो सब कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ। कामनाओं से इच्छाहीन हुआ, भगवत गीता में तो विशेषकर काम महाशत्रु बताया है, तो वो विकारी भावनाएं तो है ही, उसके अलावा सब प्रकार की कामनाओं से पूरी तरह इच्छाहीन अर्थात ही इच्छा मात्रम अविद्या जो हो जाते हैं, तो वही योग युक्त ऐसा कहा जाता है। श्लोक को सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राज योग युक्त सन्यासी या कर्म योगी ऐसा कहा जाता है। योग युक्त अर्थात जिसका पूरी तरह से योग में ही युक्त है, योग में ही जो जुड़ा हुआ है लगातार, सन्यासी या कर्म योगी। सन्यासी या कर्म योगी की 6वें अध्याय में स्पष्ट परिभाषा बताई है। जो कर्म योगी कर्म करते करते याद करते हैं और साथ में ही जिन्होंने मनसा से भी सारे संकल्पों को त्यागा है, कर्म फल का जो आश्रय नहीं लेते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी है। और इसी बात को यहाँ और स्पष्ट रीति से बताया, श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ, अर्थात अच्छी या बुरी कोई भी प्रकार की कामनाएं अर्थात इच्छाएं न होना, तो इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे जो होते हैं वो योग युक्त सन्यासी या कर्म योगी ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो कब हो सकते हैं, उसके लिए बताया, मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त। इंद्रियों में देहभान होता है, मन बुद्धि अगर इंद्रियों के सुखों में बिखरी हुई है तो उसमें चंचलता होगी। संयमित अर्थात जो कंट्रोलिंग पावर होनी है वो होगी नहीं। इसीलिए यहाँ बताया, आत्मा में ही जो भली भांति स्थिर हो जाते हैं, जिनकी मन बुद्धि संयमित अर्थात पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियम पूर्वक चलाते हैं, तो आत्मा में ही जो स्थिर हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में ही जो स्थिर हो जाते हैं, वही योग युक्त सन्यासी या कर्म योगी ऐसे कहा जाता है। तो श्लोक में समझने के लिए रेफरेंस श्लोक है, एक तो 2वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55। इसमें जो उल्लेख आया है, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्तार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। योगी अर्थात ही स्थिर बुद्धि, एक जगह पे जिनकी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, टिक जाती है, और यहाँ भी स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण बताए हैं कि मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को जब भली भांति त्यागता है। आज के श्लोक में उल्लेख आया, श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन, और यहाँ 2वें अध्याय के 55 श्लोक में बात आई सभी कामनाओं को भली भांति त्यागने वाला आत्मस्तार में संतुष्ट रहता है। यहाँ आज के श्लोक में उल्लेख आया, विशेषतः संयमित चित्त आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। ऐसा योग युक्त कहा जाता है, और श्लोक नंबर 55 में बात आई स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यही बात है कि जो योगी है उनकी बुद्धि एक जगह टिक जाती है, स्थिर हो जाती है, तो उनके लिए ही दूसरे अध्याय का 55 वाले श्लोक में बताई है बात कि सभी कामनाओं को त्यागने की। ऐसे ही तीसरे अध्याय में 17वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17, आत्मिक स्थिति वालों के लक्षण बताए हैं इसमें, जो पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में ही स्थिर हो जाते हैं। तो आत्मा में ही जो तृप्त है उनको कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 के भावार्थ में ये उल्लेख है, जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। ये श्लोक जैसे स्वर्गीय स्थिति का जो वर्णन है उसके लिए लागू होने वाला श्लोक हमने तीसरे अध्याय में पढ़ते समय समझा था। आत्मा में ही संतुष्ट, असंतुष्टि की बात तब आती है जब देह भान है, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं और इच्छाओं की पूछ तो कभी खत्म होती नहीं है। तो इसके विपरीत जो देही अभिमानी आत्मिक स्थिति वाले हैं, आत्मा तो बिंदु है, तो आत्मा के लिए कोई भी चीजों की, भौतिक चीजों की आवश्यकता ही नहीं, देह को भूले हुए हैं, आत्मा में ही जो स्थिर है, आत्मा में ही प्रीति वाले हैं, आत्मा में ही संतुष्ट वाले हैं, तो उनकी बात बताई, उनके लिए कोई इच्छाएं नहीं होती, वो आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं। और जो देह भान वाले हैं, यह बात आई दोनों श्लोकों में, आत्मिक स्थिति में संतुष्ट होने वालों के लिए कोई इच्छाएं नहीं होती, वो आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। और इसके विपरीत देह भान में बहुत सारी इच्छाएं होती है, जिसके लिए दूसरे अध्याय का 62 श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, इसमें जो उल्लेख है, विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। अर्थात देह भान जो है, देह की जो इंद्रिया है उनके द्वारा ही विषय भोगों का सेवन किया जाता है, और इन विषय भोगों का दैहिक इंद्रियों की पूर्ति के लिए, दैहिक इंद्रियों का जो सुख है अल्पकालीन उसकी पूर्ति के लिए विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष का उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है, और आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना, कामनाएं अर्थात ही इच्छाएं भली भांति पैदा होती है, और उसके आगे तो कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध। और वो तो लिंक आगे के श्लोक में है, किस तरह से व्यक्ति अनिश्चय रूपी मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो इच्छाएं जो है ये पूरी तरह से अस्थिरता निर्माण करती है, और इच्छाओं को त्याग दिया, इच्छाहीन हुआ, वो योग युक्त ऐसे कहा जाता है। तो आज के श्लोक का सार यही है, आत्मिक स्थिति जो पुरुषार्थी जीवन का मूल फाउंडेशन है, आत्मिक स्थिति में जितना स्थिर होंगे, अब जैसे ऊपर के श्लोकों में जो बात आई है, विशेषकर क्योंकि ये श्लोक इससे जुड़े हुए हैं, आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में युक्ति युक्त चेष्टावान, तो बैलेंस वाली स्थिति जिनकी होगी, क्योंकि खान पान घूमना फिरना ये सभी इच्छाओं की ही बातें हैं, और इन सब में युक्ति युक्त बैलेंस वाली स्थिति श्रीमत अनुसार जो चलने वाले हैं, तो वो उनका चित्त संयमित अर्थात आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तो वो योग युक्त ऐसे कहे जाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है, इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट।
यदा विनियतं चित्तम्
जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ यह निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राज योगयुक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है।
यदा विनियतं चित्तम्
जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ यह निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राज योगयुक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है।
आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1427, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1427, 100% आत्मिक स्थिति अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या।
सौ परसेंट आत्माभिमानी की निशानी क्या होगी? अरे कोई निशानी बता दी है, है? है? निराकारी माने? निशानी बता दी इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। माना खाने की इच्छा रहेगी कि नहीं है? कुछ खाएं, भूख लगी है, छटपटाने लगेंगे। कुछ पिए, प्यास लगी है, इंद्रियों का कुछ न कुछ भोग भोगे, भूख लगी है। इच्छा होगी या नहीं होगी? है, देवान है तो इच्छा होगी। देवान का नाम निशान नहीं है तो कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। और अनुभव भी किया होगा ब्राह्मणों ने अपने जीवन में, जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है उन दिनों भूख और प्यास और नींद क्या हो जाता है? है, भूख भी कम लगती, प्यास भी कम लगती और निद्रा भी कम आती। ये भूख किसे लगती है? भोगी को। क्या कोई भी इंद्रियों की भूख लगती है तो भोगी है या योगी है? भोगी है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया, योगियों की भूख बहुत सूक्ष्म होती है। क्या? जितना बड़ा योगी होगा तो उसकी भूख भी कम होगी। भोगी होगा तो इंद्रियों की भूख भी जास्ती होगी। निजाम बादशाह है 500 रानियां रखता था, उसकी कामेंद्रिय की भूख कितनी बड़ी थी, कितना खाता था। हिस्ट्री बताती है कि जब वो सवेरे को नाश्ता करता था तो जो केले हैं ना उनका बड़ा लंगर पका हुआ पूरा सामने रख दिया, आपने खा लिया सारा सफाचक, इतना खाता था नाश्ते में ही, इतना खा जाता था। तो भोगी था कि योगी था? भोगी था। भोगी को भूख भी ज्यादा लगती, भोगी को नींद भी ज्यादा आती, और भोगी के जो भी इंद्रियां हैं, 9 द्वारे हैं शरीर में, कितने द्वार? 9 द्वार हैं, 9 द्वारों में से ज्यादा गंध निकलेगी। तो देखो निशानी बता दी योगी की, क्या क्या पहचान? इच्छा मात्रम अविद्या।
पॉइंट में जैसे बात आई है 100% आत्मिक स्थिति की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे कि आज के श्लोक में और श्लोक नंबर 2 अध्याय का 55 वाले श्लोक में इन बातों का उल्लेख आया है। आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं, आत्मा में ही जो संतुष्ट हो जाते हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से इच्छाहीन हो जाते हैं, तो स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। अभी ऐसे जिन्होंने इच्छाएं त्यागी है, आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं, तो उनको कोई भी प्रकार की देहभान वाली इच्छाएं निर्माण नहीं होगी। वो क्या क्या है उसके लिए ही आगे का पॉइंट है, बीसीडी नंबर 2949, बीसीडी नंबर 2949 37 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इंद्रिया और मन वशीभूत है अर्थात योगी।
ये भूख है, प्यास, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, समान रहना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? भूख लगे या प्यास लगे, क्या करो? समान बने रहो। भूख लगे तो भी कुड़मुड़ाओ नहीं, हा? पेट में हाथ घुसेड़ के अरे भूख लगी है, प्यास लगे तो भी परेशान नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए। क्या क्या याद करना चाहिए? अरे ये बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियां मनाने की, है? नहीं है? अच्छा आज आज ऐसा ही करेंगे, आज से शुरू तुरंत दान मां महाकल्याण, वाह भाई। तो भूख प्यास में भी समान रहना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे भूख प्यास ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं। फिर बाबा मिसाल किसका देते हैं? हाँ, किसी का मिसाल देते हैं? हाँ, किसका? अहमदाबादी साधु का मिसाल देते हैं। है, जैसे वो साधु था ना, क्या बोलता था? बोलता था, न मैं खाता हूं, न हगता हूं, न पीता हूं। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं कि मैं तो निर्लेप हूं, मेरी आत्मा को ये भूख प्यास आदि का कोई दुख सुख का कोई लेप छेप नहीं लगता है। देखो, ये सर्विस करते हुए भी मैं इन सब बातों से ये जैसे कि निर्लिप हूं। ये खाना पीना वगैरह ये मैं नहीं करता हूं, करता हूं हेवेनली गॉडफादर शिव की बात है, वो करते हैं निराकार नहीं। और ये भी कहते हैं, मैं आता हूं तो मैं तुम बच्चों को क्या करता हूं, क्या करता हूं? आप सामान बनाता हूं। अरे, खुद भूख प्यास लगती नहीं है, कोई लगाओ भूख प्यास से नहीं, और हम बच्चों को भी क्या देता हूं? मैं आता हूं तो तुम बच्चों को क्या कैसा बनाता हूं? आप समान। आप समान का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी आत्मिक स्टेज बनाओ, न भूख की परवाह न प्यास की परवाह। तो जैसे मैं नहीं हूं, न खाता हूं न पीता हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये स्टेज है, बोलता हूं ना, आप समान बनाता हूं। तो देखो, ये बाप कहते हैं ना कि मैं नहीं खाता हूं पीता हूं या ये कुछ भी करता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, नहीं, मैं तो आ करता हूं।
श्लोक में जो बात आई है, आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाते हैं तो सब कामनाओं से इच्छाहीन। अभी के पॉइंट में बात आई भूख और प्यास, देहभान है तो भूख और प्यास की महसूसता ज्यादा होगी, ये भी एक प्रकार की इच्छा ही है, खाने की इच्छा निर्माण होगा होना, पानी पीने की इच्छा निर्माण होना, ये तो एग्जाम्पल बताया पॉइंट में। बाकी ऐसी देह भान की, इंद्रियों की अलग अलग प्रकार की भूख निर्माण होना अर्थात ही इच्छाएं। और आज के श्लोक में बात आई है, जो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं तो पूरी तरह इच्छाहीन हो जाते हैं। जैसे शिव सुप्रीम सोल सदा काल के लिए आत्मा है, अकर्ता है, तो इसी तरह आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं, योग युक्त अर्थात स्थिर होने वाले जो है वो पूरी तरह इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। और ऐसी स्टेज होती है स्वर्ग में, जिसके लिए आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1715, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1715, हेविन में इच्छा मात्रम अविद्या होती है।
ये दो दुनिया हो जाती है पुरुषोत्तम संघ में, हेल और हेवन। हेल में क्या होता है? अरे, हेल में आग जलती है काम विकार की, और हेवन में है इच्छा मात्रम अविद्या। अरे, कोई इच्छा नहीं करते तो खाते पीते कहां से? अरे, कुछ इच्छा करेंगे है तो फिर है, खाने पीने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर इच्छा मात्र अविद्या है, तो फिर खाते पीते हैं कि नहीं है? अरे हेवन में खाना पीना होता है कि नहीं होता है? कैसे होता? इच्छा ही नहीं करते है? हाँ, जो मिला उसी में संतुष्ट। अरे जो मिला मन माने पतली पतली खिचड़ी मिल जाएगी तो भी संतुष्ट, ऐसे? अच्छा तो कहते हैं क्या, संतोष नहीं है तो सब धन दूर समान। जो आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। दुनिया के सारे धन मिल जाए, गौ धन, गज धन, बाज धन, रत्नों का धन, नोटों की गड्डियों का धन, सब मिल जाए क्या, लेकिन अगर संतोष नहीं आया तो सब धन दूर दूर है।